श्री बलराम जी की रास यात्रा और दूसरा उत्सव है शिलावंशी वदन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस और तीसरा श्री लक्ष्मानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस इसको नीचे सो हम ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे सो श्री कृष्ण वसंत रास भी है सो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग समय पर रास करते हैं कार्तिक के महीने में रास करते हैं और एक वसंत रास और आज बलराम जी का भी रास यात्रा वो भी सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इस उत्सव के बारे में बलराम जी भी रासलीला करते हैं प्रायः लोगों को नहीं पता होता है हमारे इस्कॉन के डिवोटीज को पता होगा क्योंकि कृष्ण बुक में एक चैप्टर आता है कौन सा चैप्टर है लॉर्ड बलराम से रासलीला कौन सा चैप्टर लॉर्ड बलराम विजिट्स वृंदावन तो वो चैप्टर आता है और दो आचार्य का आविर्भाव दिवस है तो इस उत्सव पर चर्चा करने के पहले सभी वैष्णव से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आज के शुभ तिथि पे जो शुभ अवसर है इनके बारे में हम कुछ चर्चा कर सकें जिससे सभी लाभप्रद हों कृष्ण के चरणों की तरफ आकर्षित हों तो जैसा हमने बोला बलराम जी की जो रासलीला इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता तो आप सभी जानते हैं कृष्ण वृंदावन से निकल आए मथुरा के लिए है ना कितनी उम्र पे निकले थे कितना एज था कृष्ण को उस समय लगभग प्राय 12 साल वर्ष उसमें निकल के आ गए और सारी गोपियां जितने भी ब्रजवासी थे वो सब बिल्कुल उनका हृदय टूट गया कि कृष्ण जा रहे हैं कृष्ण बोले आयास्य मैं आऊंगा मैं आऊंगा बस इतना ये शब्द आयास्य मैं आऊंगा इतना ही शब्द था जो उनको जिंदा रहने रखा रहा वरना कब का शरीर छोड़ दिए होते दशरथ महाराज भगवान राम के विरह में शरीर छोड़ दिए कई तो जो गोपियां हैं जो ब्रजवासी उनका प्रेम तो इतना प्रगाढ़ कैसे जिंदा रहे उसके बाद में जिंदा नहीं रह सकते थे कहते राधा रानी की जो अंगूठी थी वो उनके पूरे हाथ से निकल जाती थी तो जिंदा कैसे रह सकते व्यक्ति हालांकि अंगानी यश सकलेन्द्र वित्ती मानती पश्यंती पंती कल्यंती चिरम जगंती आनंद चिन्मय चिन्मय शरीर है उनका परंतु ऐसे ऐसे विकार हो रहे थे शरीर में लोगों के तो कैसे जिंदा रह सकते हैं कैसे प्रकट है सिर्फ एक एक कारण की वजह से कि कृष्ण ने बोला है कि वृंदावन आएंगे और वृंदावन आएंगे तो हमें उनको देखने को मिलेगा ये नहीं कृष्ण वृंदावन आएंगे और ब्रज में जब देखेंगे कि ब्रजवासी नहीं है उनके विरह में वो प्रकट हो गए हैं शरीर छोड़ दिया है तो कृष्ण को बुरा लगेगा कृष्ण को दुख होगा इस वजह से वो जिंदा थे और इस बीच बलराम जी को बार बार कृष्ण बलराम को खबर तो मिलती थी कि ब्रज में क्या हो रहा है ब्रजवासी की क्या सी हालत है
कि नंद और यशोदा की क्या हालत होगी, नंद नंद भवन के बगल से एक नदी बहने लग गई है जो उनकी अश्रु की नदी है, ये सब सुनते थे। बलराम जी बार बोलते थे कृष्ण चलते हैं वृंदावन, बोलता अभी चलेंगे अभी चलेंगे, फिर बोलते कृष्ण अभी चलते हैं वृंदावन अभी चलेंगे, फिर कृष्ण अभी चलते हैं वृंदावन अभी चलेंगे। ऐसे करते 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 उद्धव भी गए, उद्धव ने भी बोला हाँ कृष्ण आ रहे आ रहे आ रहे, उसके बाद वापस उद्धव आए, उसके बाद फिर कृष्ण नहीं गए, उसके अभी क्या उद्धव भी दोबारा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा, एक बार हो गया। तो बलराम जी ने कहा बोला ठीक है ना, फिर इनफ, कोई जा रहा नहीं जा रहा, मैं जरूर जाऊंगा। और बलराम जी ने वृंदावन की तरफ आगे बढ़े, और दाऊ जी जब वृंदावन में प्रवेश किए, ब्रज में प्रवेश किए, तो ब्रज का एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक वृक्ष, एक एक कण, एक एक गोप, एक एक गोपी, हर कोई, कौन नहीं पहचानता दाऊ जी को। सब जैसे कृष्ण से प्रेम करते थे वैसे दाऊ जी से प्रेम करते थे। तो जैसे ही बलराम जी ब्रज में प्रवेश मात्र किए, दूर से जितने भी बैल थे और जितनी गाय थी सब भागने लग गए, पूछ उठा उठा के, हिरन थे वो भागने लगे, मयूर नाचने लग गए, पेड़ सारे खिल उठे, पौधे पुष्प सारे निकल आए। वैसे ब्रजवासियों ने देखा ये क्या हो रहा है, एकदम से उनको भी लगा जरूर कुछ हो रहा है। उन्होंने दूर से देखा, कोई पेड़ पर चढ़ा, दूर से ही पहचान गए कि दाऊ जी आए हैं। सब भागते हुए जितने भी गोप थे आगे मिले, उनसे एक एक करके दाऊ जी सबसे मिले, और फिर बलराम प्रवेश किए वृंदावन में नंदगांव में। और उधर यशोदा माता को, नंद भवन महाराज को खबर मिली कि दाऊ जी आए हैं। यशोदा माता बिल्कुल जैसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई, आंसू आंखों से इतने आंसू बह गए थे कि आंखों से दिखना बंद हो गया था। और तुरंत वो भागी बलराम को, बलराम को देखने के लिए, बलराम से मिलने के लिए। और एकदम से भागी दरवाजे की तरफ, तभी याद आ रहे बलराम आ रहे, इतने दिनों बाद उसको खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो फिर वापस भागी महल में अंदर कुकिंग करने के लिए, पर फिर देखे अरे बलराम को मिलना तो है, फिर बलराम से मिलने के लिए आगे भागी, फिर अरे कुकिंग तो करना है उसे बलराम के लिए, फिर अंदर भागी। ऐसे अंदर बाहर करते रहे, सारा ब्रज पूरा विवल हो चुका। बलराम जी सभी से मिले और फाइनली यशोदा से मिले, यशोदा ने उठा के गोद में रखा। हालांकि बलराम जी अभी पूरे बड़े हो गए थे, पर वात्सल्य भाव। और नंद महाराज और यशोदा से मिलने के बाद में बलराम जी गोपियों से मिलने के लिए गए, उनको भी सांत्वना दिया, उनको बोला कि कृष्ण भूले नहीं है, कृष्ण तुम्हें रिमेम्बर करते हैं, स्मरण करते हैं, पल पल याद करते हैं। उन सबको सांत्वना ली, बलराम जी से मिलकर सभी को बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर बलराम जी इतने समय वहां पर रहे, वहां पर उन्होंने बलराम जी उसी समय ये वसंत ऋतु में रास यात्रा भी शुरू की, रासलीला। तो बलराम जी कहां पे रासलीला करते हैं, कहां पे बलराम जी लास केशी घाट पे करते हैं? नहीं नहीं, केशी घाट पे कौन करता है, श्री कृष्ण करते हैं ना, उस रासलीला वंशी वट तटस्थता, तो वहां पे श्री कृष्ण करते हैं। बलराम जी करते हैं रामघाट में। आप में से कितने भक्त गए रामघाट? हमें सौभाग्य मिला ब्रजमंडल परिक्रमा में, हम उधर से गए थे रामघाट में। बहुत ही सुंदर जगह है, यमुना जी बहुत विशाल रूप में है वहां पे, और आप देख सकते हैं कि वहां रामघाट में यमुना जी का जो मोड़ है बिल्कुल मुड़ा हुआ कसके। कोई बता सकता है ऐसे क्यों यमुना जी इतना जबरदस्त कर्व क्यों ली हुई है वहां पे? हाँ, जब बलराम जी रासलीला कर रहे थे तो वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को भेजा उनको वारुणी पिलाने के लिए, और जो शहद एक प्रकार का व्यक्ति को मदहोश करता, बलराम जी ने उसको आसादन किया और नशे में आ गए। उन्होंने बोला यमुना इधर आओ, यमुना को बोला, यमुना ने बोला नशे में बोल रहे हैं, चलो उतना ध्यान नहीं देते। बलराम जी की आंखें लाल हो गई, बोले कि मेरी मेरे आदेश को अस्वीकार कर रही है। बलराम जी तुरंत अपना हल को निकाला और खींचने लग गए यमुना को, तो यमुना जी भी प्रकट हुई, उन्होंने क्षमा मांगी। तो बलराम जी ने कहा यह रासलीला हुआ। तो कभी कंफ्यूजन होता है कि अरे गोपियां कृष्ण के साथ भी रासलीला करती थी और बलराम जी के रासलीला करती थी, ऐसा कैसे? तो अलग अलग गोपियां हैं, कृष्ण के साथ जो रासलीला करती हैं वो गोपियां अलग हैं। कौन कौन है उसमें? श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, चंद्रावली भी है। तो सारी गोपियां कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं, और बलराम जी के साथ में रासलीला करने वाली अलग गोपियां हैं, उसमें पूर्णानंदा और कई और सारी फेमस गोपियां हैं। तो ये बलराम जी का रासोत्सव है जो आज के दिन मना रहे हैं। श्री बलराम जी की, श्री राम घाट की जय। और वंशीवदन ठाकुर, तो नाम जैसे वंशीवदन, तो इनका नित्य स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण की वंशी। जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो भगवान नारायण के महान महान भक्त हैं, अलग अलग अलवर है, तिरुमंगई अलवर, कुलशेखर अलवर, तो अलग अलग भक्त हैं। आप देखेंगे ये अलवर ज्यादातर कौन है, भगवान के कोई चक्र के अवतार, कोई शंख के अवतार, कोई कमल के अवतार। वैसे ही हमारे कृष्ण लीला में हमारे कृष्ण ज्यादा शंख चक्र गदा वगैरह तो नहीं रखते, बांसुरी रखते हैं अपने साथ में, वेणु। तो वंशी के जो अवतार हैं वह है वंशीवदन ठाकुर। वंशीवदन ठाकुर की जय। सो वंशीवदन ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, और विशेषकर ये चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव होने के बाद में शची माता और विष्णुप्रिया देवी की सेवा में रत थे, और बहुत ही अनन्य भाव से उनकी सेवा करते थे, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देते थे। और जब श्रीनिवासाचार्य इत्यादि वैष्णव गण उनसे जब नवदीप पहुंचे और शची माता से मिलने के लिए विष्णुप्रिया देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए, तो वहां पे वंशीवदन ठाकुर से भी मिले, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये थे वंशीवदन ठाकुर के बारे में। और आज एक और महान वैष्णव जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, करने वाले, वो है श्री श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु के बारे में प्राय आप सबने सुना ही होगा, पर परंतु फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान के और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम फिर से इस पर चर्चा करना चाहेंगे उनके दिव्य चरित्र से। सो वंशीवदन ठाकुर के बाद में जो आज दूसरा आविर्भाव है श्यामानंद प्रभु का, तो श्यामानंद प्रभु का नाम आते हुए दो और वैष्णव का नाम याद आता है हमें। कौन दो वैष्णव है? हाँ, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। सो नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद, इनफैक्ट श्यामानंद सॉरी श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद। श्रीनिवास सबसे वरिष्ठ थे इस ग्रुप में। तो कैसे इनसे मिले, इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल जाएंगे। देखिए चैतन्य महाप्रभु के समय, चैतन्य महाप्रभु नवदीप में रहे, नवदीप में जाने के बाद में उसके बाद जगन्नाथपुरी गए। बीच में महाप्रभु ने दक्षिण और उत्तर भारत की यात्रा भी की, वृंदावन गए और दक्षिण भारत में गए अन्य स्थानों पे। तो जो जो वैष्णव धर्म है काफी तेजी से फैला, मुख्यतः बंगाल और उड़ीसा में, क्योंकि ये दोनों जगह चैतन्य महाप्रभु के हेडक्वार्टर्स थे। विशेषकर जगन्नाथपुरी, वहां पे महाराजा प्रताप रुद्र हिंदू राजा भी थे जो महाप्रभु के भक्त थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद जो उड़ीसा है, जो महाराजा प्रताप रुद्र के पास विशेष शक्ति थी चैतन्य महाप्रभु के प्रकटे के समय में, वो मुगल साम्राज्य को उड़ीसा उत्कल प्रदेश में एंटर करने से रोक रखे थे। हालांकि कई आक्रमण होते थे और वीरता से महाराजा प्रताप रुद्र उनका सामना करते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद में उत्कल प्रदेश उड़ीसा को मुगलों ने और मुसलमान शासकों ने हर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद हिंदुओं पे, ब्राह्मणों पे और मंदिरों पे बहुत अत्याचार हुए, जगन्नाथ जी की सेवाओं में भी विघ्न आया। और उड़ीसा में जितना तेजी से वैष्णव धर्म, विशेषकर गौड़िया वैष्णव धर्म आया था, उतनी ही तेजी से वो गायब भी होने लग गया, उसका विनाश भी हो गया। इतनी तेजी से वैष्णव धर्म उड़ीसा में कैसे आया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष व्यक्ति को प्रचार किया था। वो कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य, पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य। वो राजगुरु थे महाराजा प्रताप रुद्र के। महाराजा प्रताप रुद्र की राजधानी थी कटक, हमारे कटक निवासी है ज्योतिश्वर प्रभु। तो कटक उनकी राजधानी थे, और उनके जो हेड प्रीस्ट थे महाराज पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य, ये रहते थे जगन्नाथपुरी में। हालांकि पहले विद्यानगर के निवासी हैं, अगर आप विद्यानगर में जाएंगे अभी भी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के दर्शन कर सकते हैं, परंतु बाद में महाराजा प्रताप रुद्र के आमंत्रण पे वहां पे आके रहने लगे थे। उनके प्रचार होने के बाद में पूरे महाराजा जब वो मायावादी से वैष्णव बन गए ये सुन के, तो लोग हैरान रह गए, अरे इनका तिलक इधर से ना होके इधर हो गया। ऐसा कैसे हो गया? 7 दिन हम तो 7 डे कोर्स देते हैं, वो शायद यहीं से शुरू हुआ था। एक्चुअली 7 डे कोर्स इन्होंने दिया था, महाप्रभु ने 1 डे कोर्स। एक बार में सीधे सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि वैष्णव को देख के दूर से ही बनाते थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट गंभीरता से चलते थे, इधर ना उधर, वो हरि हराय नमः करते हुए सड़क में नाचने लग गए और लोग कहने लगे, और महाप्रभु तो उनको प्रचार करके चले गए दक्षिण भारत। तो लोग कहने लगे क्या हो गया। फिर उसके बाद महाराजा प्रताप रुद्र बोले, अरे कैसे, बोले वो तो भगवान थे, चले गए, क्या बात कर रहे हो। तो सभी लोग मिलने के लिए, काशी मिश्र और अन्य 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 बहुत सारे लोग थे, महाप्रभु के आने के बाद सभी ने महाप्रभु के शरण ली, उस प्रकार से प्रायः उड़ीसा में लोग वैष्णव बन गए। परंतु फिर से मुगल शासक की वजह से वहां पे सूखा हो गया एक बार वैष्णव धर्म। तो ये आज आप उड़ीसा में जाएंगे तो काफी हद तक वहां पे वैष्णव धर्म है। तो इसका मेन क्रेडिट जो जाता है इस वैष्णव धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए, ये क्रेडिट जाता है श्यामानंद प्रभु और उनके अनुयायियों को। तो ये महान वैष्णव श्यामानंद प्रभु, इनका प्रकट हुआ था, कुछ लोग कहते हैं बंगाल में एक जगह पड़ी धरेन्द्र भद्रपुर, और कुछ लोग कहते हैं कि गोपी वल्लभपुर, दोनों में डिफरेंसेस है, लोग कहते हैं यहां पे भी कुछ लोग हैं, पर एनी हाउ उनके पिताजी का नाम था कृष्ण मंडल और उनका जन्म यहाँ पे हुआ बंगाल में, उड़ीसा में पड़ता है, क्षमा कीजिएगा, ये जगह उड़ीसा बंगाल के बॉर्डर पे, जो गोपी वल्लभपुर है वो खड़गपुर के पास में पड़ता है, इस प्रकार से उसको बंगाल कह सकते हैं, धरेन्द्र भद्रपुर ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर में। तो जब ये जन्म से ही बड़े विचित्र विलक्षण लक्षण ये शो करने लग गए, जय श्री श्री राधा राधे करमन, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री सीताई गौर सुंदर शिल प्रभुपाद की जय। और स्वभाव से ही ये विरक्त थे, गौरंग नित्यानंद की कथा सुनते रहते थे, कई साधु संत आते थे, कई सारे महान वैष्णव आते थे उधर में, उन सभी से श्रवण करते रहते थे और गौर नित्य की लीलाओं में मग्न रहते थे। थोड़े से बड़े हुए तो उनकी इच्छा हुई कि हम गंगा स्नान करके आए। अरे गंगा स्नान वहां पे उड़ीसा में तो गंगा बहती नहीं, तो गंगा स्नान करने कहां जाओगे, अभी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हो गए थे, युवा ही थे, किशोर कह सकते हैं बिल्कुल। तो बोले गंगा स्नान करने जाओगे, बोला हाँ गंगा स्नान करने, कहाँ जाओगे गंगा स्नान, बोले यहाँ से वैष्णवगढ़ है, यहाँ से नवदीप जाते हैं, बंगाल जाते हैं, तो साधु संतों के साथ मैं चला जाऊंगा और वहीं पर गंगा है, स्नान करके फिर वापस आ जाऊंगा। अरे तो परिवार वाले सारे सतर्क हो गए, बोले वैसे ही विरक्त स्वभाव का है, साधु संतों के साथ गया गंगा स्नान करने गया तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। परंतु उनकी तीव्र इच्छा को देखते हुए परिवार वालों ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ गंगा स्नान करने के लिए। और गंगा स्नान करने के लिए गए बहुत उत्सुकता से गंगा स्नान करने के लिए। तो नवदीप जाते जाते रास्ते में ही जगह पड़ी अंबिका कालना, तो गंगा जी वहां पे भी, वहीं पे गंगा जी में स्नान किया, खूब खुशी के साथ में गंगा जी जो विष्णु के चरणामृत है उनका पान किया, उसमें डुबकी लगाई, उसमें मंत्रोच्चारण किए, और वहीं पे अंबिका काल में जैसे गंगा के अंदर से निकले ही वहां पे उन्होंने विशेष ख्याति सुनी एक महान वैष्णव की। बोले यहां भी एक ऐसे महान वैष्णव है जिनके हृदय में स्वयं गौरंग महाप्रभु निवास करते हैं। बोले ऐसे नहीं कि हम बोल रहे कि भाव के रूप में, उनके हृदय में सच में गौरंग महाप्रभु निवास करते हैं। बोले ऐसा कैसे, गौरंग महाप्रभु के एक पार्षद थे गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में सुबल सखा है, सुबल सखा श्री कृष्ण के बिल्कुल खास सखा है, बिल्कुल खास, और सुबल सखा राधा रानी को देख बिल्कुल हुबहू राधा रानी जैसे दिखते हैं, बस ऐसा लगता है मेल बॉडी फीमेल बॉडी। कभी कभी जब राधा रानी को जटिला कुटिला के चुंगल से निकल के कृष्ण से मिलना होता है तो सुबल सखा ड्रेसअप होकर बैठ जाते हैं तो सुबल सखा का मूड मतलब ना बहुत इंटीमेट, ज्यादा सखा राधा रानी से कम्युनिकेट नहीं करते, सुबल सखा कम्युनिकेट करते। सुबल सखा कृष्ण के भाव को देख के समझ आते अभी विरह फील कर रहे हैं तो जाके राधा रानी के पास मैसेज देना, तो वेरी इंटीमेट, बहुत ही घनिष्ठ है सुबल सखा। तो सुबल सखा गौर लीला में है गौरीदास पंडित। तो जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया तो एक दिन यहाँ पे अंबिका कालना में आए जहां पे गौरीदास पंडित का निवास स्थान था, उनसे मिले और उसके बाद जाने लगे। गौरीदास ने बोले जा रहे हो, बोले हाँ जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले हाँ जा रहे हैं, नहीं जाने दूंगा। बोले ऐसे कैसे नहीं जाने, हमें संकीर्तन करना है, संकीर्तन मिशन फैलाना पूरे उस पे पृथ्वी पे। बोले नहीं 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 मैं नहीं जाने दूंगा। अब सुबल सखा की बात कैसे टाल सकते हैं, अब संबंध हमने बता दिया उनका। तो उन्होंने बोला ठीक है एक कंडीशन है, अब सुबह हम कर देते हैं कि हमारे एक विग्रह बना नीम के बिल्कुल हूबहू हमारे जैसे, कारीगर को बुलाया गया, नीम के पेड़ काटे गए बिल्कुल हूबहू 7 फीट के 7 फीट के करते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लगे बनाया गया। बोले कि ये जो विग्रह है महाप्रभु ने कहा मैं ऐसा कृपा करता हूं मुझसे बिल्कुल अभिन्न होंगे। बोले बिल्कुल अभिन्न, बोले हाँ बिल्कुल अभिन्न बने। और उसके बाद बोला गौरीदास ये तुम्हारे पास रहेंगे, तुम इनकी सेवा करो और हम जा रहे हैं। बोलता नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर ये आपसे अभिन्न है तो आप यहीं पर रहिए और ये जाएंगे संकीर्तन पे। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो ऐसा ही होगा। तो क्या हुआ, गौर निताय क्या हुआ, वो विग्रह बन गए, जो गौर जो विग्रह थे वो गौर निताय चलने लग गए। तो बोला उनको रोका गौरीदास, रुको रुको रुको, तो वो रुक गए, ये चलने लगे। फाइनली किसी एक सेट पे सेटलमेंट हुआ और वो वहां पर रह गए। तो गौर निताय की सेवा में गौरीदास पूरा अब्सॉर्ब रहते थे। एक दिन गौरीदास के पास में एक शिष्य आए, एक व्यक्ति आया जो उनके शिष्य बनना चाहते थे। गौरीदास ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, इनका नाम रखा चैतन्य दास। तो चैतन्य दास बहुत अच्छे सेवा भाव से उनकी सेवा करते थे और गौरीदास पंडित खूब जोर शोर से अच्छे से वहां पे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल बड़े लार्ज स्केल पे, तो वैसे खेतुरी बाद में मनाया गया पर वो मनाते थे। तो गौर पूर्णिमा आने वाला है, गौरीदास पंडित ने कहा हम मनाएंगे, तो क्या गौरीदास पंडित ने किया, चलो जाके थोड़ा फंड रेजिंग करते, तो दूर दूर लोगों से मिलने के लिए गए, फेस्टिवल मनाना है सब मिलने के लिए। गौर पूर्णिमा नजदीक आ रहा नजदीक आ रहा नजदीक आ रहा, गौरीदास पंडित आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं। चैतन्य दास को घबराने लग गया, क्या करें क्या करें क्या करें, आए तो आए नहीं, तो तैयारी शुरू करनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम क्या करते तैयारी शुरू करते थे, फेस्टिवल जस्ट आने वाला है, तो फेस्टिवल कमेटी के कुछ लोगों को तो चिंता हो गई। तो बोला टेंट पंडाल वंडाल की बात करने लग जाते हैं, लोगों का आमंत्रण देते हैं, जैसे गुरु जी आएंगे फाइनल उनको बता देंगे हमने ये किया। जैसे उन्होंने शुरू कर दिया उधर से गौरीदास पंडित आ गया, बोले दोस्त तुमने मुझसे अनुमति लिए बिना ही ये सब शुरू कर दिया, तो जाओ निकल जाओ मैं अकेले बनाऊंगा। तो बोले अरे क्या गुरु ने तिरस्कार कर दिया, अब क्या करें। तो बोले जाओ तुम अपना फेस्टिवल अलग बनाओ, मैं अपना फेस्टिवल अलग बनाता हूं। तो बोले तिरस्कार नहीं किया, बोला अलग फेस्टिवल मनाओ, दुखी दुखी तो थे अब क्या करें। इधर गौरीदास पंडित खूब हृदय से गौनिताई के लिए बनाने लगे, वो क्या थे भगवान की सेवा करना चाहते, खूब कुकिंग करते थे, इतना कुकिंग करते थे अपने हाथों से कुकिंग करते, लाते थे थाली में खिलाते थे, फिर कुकिंग करते थे फिर लाते थे खिलाते थे। उधर चैतन्य दास के पास क्या है क्या करे, कुछ है तो नहीं खिलाने पिलाने का, तो कुछ है नहीं क्या करे, कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन शुरू कर दिया। इधर गौरीदास पंडित घंटों घंटों कुकिंग कर रहे, कुकिंग करने के बाद में लेके आए ऑल्टर में भोग लगाने के लिए, पहुंचे तो देखा है गौनिता गायब। गौरीता कहां चले गए, देखा कहां चले गए कहां चले गए, दूर से देखा क्या ये चैतन्य दास कीर्तन कर रहे हैं, उसके कीर्तन में जोर जोर से दो लोग उछल रहे, एक पीले कपड़े में एक नीले कपड़े में। तो बोले कि इनके लिए मैं यहां पे खाने के लिए बना के लेके आया हूं इतने घंटों घंटों की मेहनत से, और ये कीर्तन में जाके उछल रहे, आप देखना। तब उठाई छड़ी भागे कीर्तन की तरफ, उधर से महाप्रभु ने देख लिया, बोले निताई वो देखो गौरीदास छड़ी लेके आ रहे हैं। बोले देखा गौरीदास छड़ी लेके आ रही, इतनी जोर से भागे, आज ओझल हो गए आंखों से, कहां गए निताई, महाप्रभु देख रहे निताई निताई कहां गए, निताई तो कहीं भाग गए दिख भी नहीं रहे। अब महाप्रभु गोल गोल भागना शुरू किया और पीछे पीछे गौरीदास गोल गोल, फिर गौरीदास और आगे आगे महाप्रभु, ऐसे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, महाप्रभु को समझ में नहीं आया, फिर कूदे सीधे चैतन्य दास के हृदय के अंदर में। तो जब चैतन्य दास के हृदय के अंदर में पड़े तो गौरीदास देख के स्तब्ध रह गए, उनके हाथों से छड़ी छूट गई और तुरंत जाके चैतन्य दास को हृदय में लगा लिया और बोले आज से तुम्हारा नाम चैतन्य दास नहीं, क्या है हृदय चैतन्य। ये कथा सुनाना जरूरी है श्यामानंद प्रभु के लिए। तो हृदय चैतन्य की ख्याति सुनी और फिर गौरीताई फिर पकड़ हुए और गौरीदास ने सेवा की। तो बोले ये वो गौरीताई की सेवा करते हैं यहाँ पे। तो श्यामानंद प्रभु थे, इनका बचपन में से नाम पड़ा था दुखी, क्योंकि इनके पहले जितने भी पुत्र थे इनके पिता कृष्ण मंडल के, वो सारे मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे, तो उनका नाम दुखी रख देते जिससे यमराज इनके पास नहीं आएंगे। तो जो भी हो, तो गए हृदय चैतन्य के पास और बिल्कुल विनीत भाव से बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। हृदय चैतन्य ने बोला ठीक है आप यहां पर रहिए। देखते थे कैसे समय में कैसे ये दुखी नित्य रूप से सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे, सुबह उठते ही कृष्ण नाम लेते रहते हैं, उनकी सेवा से प्रसन्न होके हृदय चैतन्य ने इनको दीक्षा दिया और नाम दिया कृष्णदास, जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। तो बोला तुम्हारा नाम कृष्णदास है, माता पिता ने दुखी बोला तो क्या हुआ, तो दुखी पहले से था, कृष्णदास नाम पड़ गया दुखी कृष्णदास। पर बहुत ही अनन्य भाव से हृदय चैतन्य की सेवा में लगे रहते थे और गुरु की सेवा करते करते, गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हुए, राधा कृष्ण की लीला सुनते हुए, इनके हृदय में इच्छा आई कि वृंदावन भी जाए, यमुना जी की दर्शन करें, यमुना जी में भी जाए दर्शन करे, कृष्ण लीला के भी दर्शन करे। गुरु से बोले नहीं कि गुरु जी से कैसे बोले, गौनिता की सेवा चल रही है। गुरु जी समझ गए मनोभाव से, तो बोले ठीक है, देखो वैसे भी मैं यहाँ पे के, मेरे को तो सेवा दी मेरे गुरु जी ने गौनिता की सेवा करने के लिए, मैं तुम अच्छे से शिक्षा दे नहीं पा रहा हूं। तो कृष्णदास मैं सोच रहा तुम जाओ वृंदावन, वहां पे राधा कृष्ण की लीला स्थलियों को देखो, ब्रज ब्रज परिक्रमा करो, और वहां पे मिलो वैष्णव शिरोमणि कौन, श्रीजीव गोस्वामी से, जो महाप्रभु के सिद्धांत को, महाप्रभु की शिक्षाओं को विलक्षण रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। अब उनसे मिलो, उनसे उनके अंडर में अध्ययन करो। श्याम सो दुखी कृष्णदास अत्यंत प्रसन्न हुए, साधु संतों के साथ निकल पड़े। करीब महीना भर लगा, और ज्यादा ही लगा होगा उनको वृंदावन पहुंचने में। और रास्ते में जब आए तो नवदीप होते हुए, और यहाँ से बनारस होते हुए, बनारस में तपन मिश्र इत्यादि सबसे मिलते हुए वो पहुंचे वृंदावन। और वृंदावन में वो सीधे गए श्री जीव गोस्वामी के पास में। जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए उनसे मिलके, उनके भाव इत्यादि को देख के, और उनको वो लेटर लेके आए थे हृदय चैतन्य का। तो लेटर पढ़ा उन्होंने कि ये मेरा शिष्य है चैतन्य दास, सॉरी दुखी कृष्णदास, मैं इसको तुम्हारे आश्रय में समर्पित करता हूँ, तुम इसे शिक्षा दो, अच्छे से ट्रेन करो, सेवा में लगाओ। सो जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। और वहां पे ऑलरेडी दो लोग पहुंच चुके थे जीव गोस्वामी के पास, और कन्या लोग कई लोग थे, उनमें से दो बहुत स्पेशल लोग थे, ये थे श्रीनिवास और नरोत्तम, श्रीनिवास और नरोत्तम। सो ये अभी श्रीनिवास और नरोत्तम की दीक्षा नहीं हुई थी, दुखी कृष्णदास की दीक्षा हो गई थी। तो वो दोनों, तो जो श्रीनिवास और नरोत्तम, तो अपने अपने गुरु के पास में सेवा करने के लिए जाते थे। श्रीनिवास जाते थे किनके पास में, गोपाल भट्ट के पास में, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में। और नरोत्तम को तो हालांकि महाप्रभु ने ऑर्डर दिया था लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो, लोकनाथ गोस्वामी ने पढ़ ले रखा था, मैं किसी की दीक्षा नहीं। तो वो बड़ा पेचीदा केस था, वो आप कहानी जानते, कथा जानते हैं, उनके पास जाते थे। तो इधर दुखी कृष्णदास की दीक्षा हो चुकी थी और यहां पे आए थे, तो उनको लगा डायरेक्ट ब्रज की सेवा में। तो ब्रज की सेवा कौन सी है, डायरेक्ट झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाना कोई ऐसा नहीं कि नए भक्त की सेवा है, झाड़ू लगाना भगवान के धाम में, भगवान के मंदिर में बहुत उन्नत सेवा है। तो ये सेवा लगाना, यहां सेवा करने के लिए डेली जाते थे सेवा कुंज में, ब्रज में, वृंदावन की गलियों में, कुंज में, और घंटों घंटों झाड़ू लगाते रहते। देखिए खाली क्लासरूम के ज्ञान से वो ज्ञान नहीं होता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कविये, हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। और वो ज्ञान कैसे होगा, जो थ्योरेटिकल ज्ञान है उसकी भी जरूरत है, परंतु जब हम सेवा करेंगे गुरु के निर्देशानुसार, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, गुरु के निर्देशानुसार, जैसा गुरु चाह रहे। गुरु कहते हैं अभी बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, गुरु कह रहे अभी रोको, अभी रोको, गुरु कह रहे अभी चेंज करो, चेंज करो। जैसे गुरु के निर्देशानुसार अगर सेवा करेंगे तो क्या होगा, वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा, भगवान प्रकट होंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा, कि हम जब सेवा करना शुरू करते हैं जो कि जिह्वा से शुरू होती है, तो क्या होता है, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदा, भगवान श्री कृष्ण के नाम, पार्षद, लीलाएं, गुण इत्यादि स्वयं प्रकट होती है। तो जब इसी प्रकार से वो सेवा कर रहे थे ब्रज में, सेवा करते रहते थे, झाड़ू लगाते रहते, तो क्या हुआ, स्वयं एव स्फुरत्यदा, एक दिन क्या हुआ, जब झाड़ू लगा रहे थे, लगाते लगाते एक एक विशेष नुपुर उनको दिखाई पड़ा। नुपुर जो चरणों में पहनते हैं, तो वो नुपुर दिखाई, बड़ा साधारण नुपुर नहीं लग रहा था, सोने का लग रहा था, पर साधारण सोने का भी नहीं लग रहा था, विशेष कांति निकल रही थी। तो दुखी कृष्णदास ने देखा उस नुपुर को, उठाया, स्पर्श किया, तो एक शरीर में अलग सी कंपन हुई, देखा ये तो साधारण नहीं है। उसको मस्तक से लगाया तो बिल्कुल आनंद में आ गए, बोले ये तो बड़ा विशेष है, तुरंत रख लिया, कपड़े में बांध लिया, गांठ में बांध लिया, और ऐसे फिर झाड़ू लगाने लगे। झाड़ू लगाते लगाते देखा एक एक युवती वो वहां पे आई है और बोल रही है, कुछ ढूंढ रही है। उसके बाद आज की जाके बोला कि सोजी आपको कुछ मिला यहाँ पे, कोई चीज मिली, बोला हाँ मुझे कुछ मिला है, पर तुम बताओ तुम क्या ढूंढ रही हो। भाई ऐसे कोई भी बोला मुझे ये मिला ले जाओ, ऐसे ये मोबाइल हमें मिला है, आप मॉडल बताइए तभी हम देंगे। हल भक्त भी करते तो बोले कुछ मिला है, क्या मिला है पहले आप बताओ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? बोले एक नुपुर खो गया है, वो नुपुर ढूंढ रहे हैं। बोला नुपुर मिला आपका है क्या? बोले मेरा तो नहीं, मेरी स्वामिनी का है। ये स्त्री भी साधारणी थी, बहुत ही सुंदर थी, पर दुखी कृष्णदास बिल्कुल धैर्य रखे हुए थे। वो बोले हाँ नुपुर तो मिला है पर आपकी स्वामिनी का है, पहले उसको लाइए जिसका है, जिसका है उसी को देंगे, पहले मैच करेंगे उससे उसके है कैसे, थोड़ा नहीं बोल चील के किसी को दे दिया बाद में किसी और को निकला तो मैं समस्या में होऊंगा। ये भी एक नीति है, जिसका है उसको देखे मिलकर देना। तो बोले तो लड़का बड़ा ढीठ है, बड़ा तेज है। अरे बोलते हैं वो जो युवती थी वो बोल बैठी, अरे तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो नुपुर? तो बोले नहीं दूंगा, बिल्कुल ढीठ अवस्था में बोले। बोले मैं जानते हो कौन हूं? मैं हूं ललिता। बोले जो भी हो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो ललिता सखी थी स्वयं, वो चली गई। ओ गई राधा रानी के, बोले आपका नुपुर तो मिल गया पर एक ढीठ लड़के को मिला है, चल के उसे लेना पड़ेगा। तो राधा रानी स्वयं आई और राधा रानी को देख के वो दुखी कृष्णदास बिल्कुल आनंद विभोर हो गया, आंखों से अश्रु बहने रहे थे। फिर बोले उन्होंने बोले कहते मैं क्या नुपुर मिला है कोई? बोला हाँ नुपुर मिला है, वो मेरा नुपुर है। और बोला क्या मैं देख सकता हूँ नुपुर आपका है? आपके चरण से लगा के देख के उन्हें आपके? बोला हाँ बिल्कुल देख सकते हो। और वो दुखी कृष्णदास ने चतुर था, राधा रानी के चरणों से नुपुर मैच करने के बहाने क्या किया, राधा रानी के चरणों का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वही लोटपोट करने लगे आनंद। तो ललिता सखी ने बोला कि आप समझ गए रहे, आप क्यों नुपुर खोई, क्या आपको इसको कृपा करना था तो आप कर दीजिए, अच्छे से कृपा कीजिए। तो राधा रानी ने क्या किया, वो नुपुर को उठाया और उसके मस्तक के बीच में लगा दिया और लगाया यहां पे तो एक निशान पड़ गया। वो निशान पड़ा और निशान मिटी नहीं रहा तो बिल्कुल एक नया तिलक बन गया, तिलक जैसे हमारा गौड़ी वैष्णव तिलक, उसके बीच में एक निशान। ये निशान आगे चल के श्यामानंदी, ये तिलक आगे चल के श्यामानंदी तिलक के रूप में फेमस हुआ। तो बोले कि ललिता सखी बोल दी क्योंकि तुमने श्यामा राधा रानी को आनंद दिया है, इस वजह से तुम्हारा नाम पड़ेगा श्यामानंद, आज से तुम्हारा यह तिलक है। और उनको उनका स्वरूप भी दिखाया जो मंजरी का स्वरूप है। उसके बाद से बोले ये बात जो हम तुम हमसे मिले ये किसी को मत बताना, सिर्फ जीव गोस्वामी को बता सकते हो, किसी और को नहीं बताना। बोले ठीक है। और उन्होंने एक विग्रह भी दिए राधा रानी ने, इसका नाम राधा श्याम सुंदर विग्रह है। आप जाएंगे राधा श्याम सुंदर मंदिर, कितने लोग गए वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर, वहां पे श्याम सुंदर जी के दर्शन किए आपने बड़े? तो वो विग्रह नहीं है। वो विग्रह नहीं, वो विग्रह जो आपको वहां पे दर्शन होते हैं वो है बलदेव विद्याभूषण के, वो भी श्याम सुंदर है। अब उन्हीं के बगल में आप जाएंगे छोटे से विग्रह है, वो राधा श्याम सुंदर के है, राधा रानी अपने हृदय से निकाल के दिए थे उनको। तो जब वहां से श्यामानंद प्रभु आए, श्यामानंद उनका नाम पड़ गया, श्यामानंद श्यामानंद प्रभु, तो वो आए जीव गोस्वामी के साथ। जीव गोस्वामी को बहुत हर्ष हुआ यह सुनकर। तो धीमे धीमे वृंदावन में, परंतु ये बात किसी को नहीं बतानी थी, धीमे धीमे वृंदावन में बात फैल गई। जीव गोस्वामी ने जो बंगाल से वैष्णव आया था उसको दीक्षा दे दी, श्यामानंद नया नाम दे दिया, नया तिलक दे दिया। बोले क्या बात करो, जीव गोस्वामी ने दीक्षा दे दी, नया नाम दे दिया, नया तिलक, क्या बात करो, जीव गोस्वामी ने दीक्षा दे दी, नया नाम दे दिया, नया तिलक दे दिया। ऐसी बातें वृंदावन के वृंदावन तक रहेंगे क्या? वृंदावन से जो भक्त आते जाते उनके पास भी गए, करते 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 बंगाल पहुंच गई, नवद्वीप पहुंची। जीव गोस्वामी ने जो बंगाल से दुखी कृष्णदास है उसका नया नाम दिया, नया तिलक, और ये बात पहुंची किसके पास? हिदा चेतन। बोले क्या बात कर रहे हो, मैंने भरोसा रखे रूप और सुनाए तन का अनुवाई समझ के उसके पास भेजा अपने शिष्य को, उसने उसको नया नाम नया तिलक दे दिया, दीक्षा दे दी, क्या मतलब है, ऐसा कैसे? वहीं से पत्र लिखा, मैंने सुना है तुमने दुखी कृष्णदास को मेरे शिष्य को नया नाम तिलक दिया, ऐसा क्या यह सत्य है? तो जीव गोस्वामी ने रिप्लाई किया कि यह जरूर है उसके पास नया नाम और नया तिलक, पर मैंने नहीं दिया। बोले आपने नहीं दिया तो किसने दिया? आप बस सुन के बहुत आग बबूला हो गए। हृदय चतन ने बोला अभी ठीक है चलो चलते, देखिए शिष्य शिष्य स्वीकार करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ऐसे नहीं कि शिष्य कहीं भी जाए कुछ भी करे क्या करे. हृदय चैतन्य वहां से महान महान वैष्णव में शिष्य अपने अनुयायी और अन्य जो अन्य उस समय फेमस वैष्णव थे उनको लेके वहां से पूरा पार्टी चला. नवदीप से अंबिका कलना से पूरा चला और वृंदावन आया सेटल करने के लिए. क्या हो रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे आया बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रज के नवदीप के महान महान वैष्णव इकट्ठा हुए थे. और इश्यू था, इश्यू क्या था कि दुखी कृष्णा को नया नाम नया तिलक कैसे दिया जीव गोस्वामी ने. देखिए कौन कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कितना बड़ा पॉलिटिकल, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. और किस किस के बीच में हो रहा है? हृदय चैतन्य, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु कूद गए. श्यामानंद जिनको राधा रानी आके दर्शन दे रही है, ललिता सखी दर्शन दे रही है और खुद राधा कृष्ण के विग्रह निकाल के दे रही है. और जीव गोस्वामी जिसको राधा दामोदर बांसुरी बजा के बुलाते थे. इन तीनों के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसके बारे में शायद पहले कभी सुना नहीं गया और आगे बाद में भी सुना नहीं जाएगा. ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कई बार हम इस्कॉन में आते हैं सोचते हैं यहाँ पे ये हो गया, ये दो भक्तों के बीच मतभेद हो गया. प्रभु जी ऐसा कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? भक्तों को तो विनम्र होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, दोनों को एक ही बात बोलनी चाहिए. ये देखिए अगर ये देखेंगे सुनेंगे तो क्या होगा. प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तों के बीच में मतभेद हो सकता है परंतु वो मतभेद ये नहीं होगा हम कृष्ण की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे. सारे के भक्त का एक ही मत है कि कृष्ण की सेवा करेंगे. तो भेद क्यों है? जब एक ही मत है तो मत में भेद क्यों है? हाँ मत में भेद यह हो सकता है कि कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे. अभी कृष्ण रात में सोएंगे या नित्य करेंगे जागेंगे, राधा रानी यशोदा माता कभी भी अग्री करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. मतभेद रहेगा क्यों नहीं रहेगा? तो मतभेद है, ये इटर्नल मतभेद है और इसको समझने के लिए थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए. तो ये बहुत बड़ा मतभेद हुआ. हृदय चैतन्य आए, वो बोले कि कैसे इसने नया तिलक, और सब पूछने लग गए कि भाई क्यों नया, किस क्यों दिया इसको नया तिलक नया नाम. बोले मैंने नहीं दिया जीव गोस्वामी ने, आप इसी से पूछो किसने किसने दिया. श्यामानंद से पूछा, बिल्कुल हृदय चैतन्य आग बबूला हो गए. बोले क्यों लिया तुमने नया तिलक और नया नाम, कैसे तुमने ये रूप धारण कर लिया, नया नाम ले लिया, मैंने तुम्हें नाम दिया है. बोले जी गुरु जी उत्तर दो इस चीज का. बोले दे रहा हूं, बस मुझे एक कुछ क्षण दीजिए मैं उत्तर दूं. और ये कहते हुए वो ध्यान में चले गए और ध्यान में अपने हृदय से तीव्र प्रार्थना करने लग गए. किसको प्रार्थना करने लगे? ललिता सखी को प्रार्थना करने लगे. आपने नया नाम तो दे दिया, राधा रानी ने तिलक तो दिया, मेरी ऐसी हालत हो रही है, कृपा कीजिए मुझे, मैं क्या करूं, ऐसी अवस्था में मैं क्या कर सकता हूं. आंख उसे रो रहे थे, समाधि में तो थे, रो रहे थे एक्चुअली, प्रार्थना कर रहे थे कि आप बचाइए मुझे, मेरे गुरु के सामने है, मैं उनका हृदय भी नहीं दुखाना चाहता. तो ललिता सखी उनको प्रकट हुई, बोले रुको मैं अभी बताते हूँ. ललिता सखी तुरंत गई राधा रानी के पास. राधा रानी आपने उसको नया तिलक तो दे दिया है और यहाँ पे देखो ये पंगा कर रहा है ये हृदय चैतन्य. हृदय बोले अच्छा ठीक है. राधा रानी कहती है, बोले अभी मैं समझाती हूँ उसको. तुरंत बोला राधा रानी ने किसको? सुबल सखा को. सुबल सखा कौन थे, कौन है सुबल सखा? गौरीदास पंडित. बोले देखो तुम्हारा चेला क्या कर रहा है, तुम्हारा शिष्य, वो मैंने उसको नया तिलक दिया, ललिता ने उसको नया नाम दिया और उसको इतना परेशान कर रहा है. बोला तो सुबल सखा ने बोले उससे बोल दो कि बोल दे कि मेरे परम गुरु ने नया नाम दिया. मेरे परम गुरु ने नया नाम नया तिलक दिया. तो बोले कि अच्छा गौरीदास पंडित ने नया नाम नया तिलक दिया. तो बोले फिर श्यामानंद प्रभु ने आँख खोल के बोला कि मुझे नया नाम नया तिलक दिया है गौरीदास पंडित ने. बोले ये गौरीदास ने दिया, क्या चक्कर है? बोले क्या है ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल. और बोले अगर आप, गौरीदास ने ये भी बोला, बोले कि अगर उसको बोले डाउट है तो मिटा दे तिलक, मिटा दे. तो बोले ठीक है. हृदय चैतन्य ने बोला कि हाँ ये उन्होंने दिया है, गौरीदास पंडित ने दिया है मेरे परम गुरु जी ने, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेकन तिलक मिटा दीजिए. तो उन्होंने कहा ठीक है. तुरंत आए हृदय चैतन्य, कपड़ा लिया पोछा और कपड़े के क्या तो ऐसे लिया, मलने लग गए, कसके मले 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 और हटाए तिलक फिर से अपनी जगह पे, फिर लिया फिर मले फिर से तिलक वहीं पे, कसके रगड़े रक्त निकल गया वहां से, तिलक वहीं पे, रक्त के ऊपर भी तिलक प्रज्वलित हो रहा है। अब समझ गए ये कोई साधारण तिलक नहीं, विशेष तिलक था। सभी ने बोला भी रुको रुको रुको, बहुत ज्यादा हो रहा है, सभी कोई साधारण तिलक नहीं है, तुमने जो टेस्ट होना था हो गया, बोलना था बोल दिया, उसके बावजूद भी ये तिलक है, मतलब हमें कुछ स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, श्यामानंद को स्वीकार किया गया। उधर गौरीदास पंडित आए, बोले ये तिलक हमारे ही दिया हुआ है। ठीक है, हृदय चैतन्य ने स्वीकार को कर लिया। अब क्या करे, ठीक है, गौरीदास पंडित है, सॉरी हृदय चैतन्य है, श्यामानंद प्रभु है, उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ पे आए, तो क्या करते ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा कौन करेगा, जीव गोस्वामी के साथ में श्यामानंद प्रभु कई बार कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं लेके चलता हूं आपको ब्रजमंडल परिक्रमा करने। लगे अलग अलग वनों में जाते थे, तो हृदय चैतन्य थे साक्य भाव में, गौरीदास पंडित साक्य भाव में, उसी साक्य भाव में, तो अलग अलग जगह रहते, उनको वैसे ही मूड होता, उनके अन्य शिष्यों का भी वही मूड रहता था, परंतु श्यामानंद प्रभु कौन से भाव में थे, मंजरी स्वरूप में, तो अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग वनों में जाते थे, उनका वो मूड होता था। हृदय चैतन्य देखते थे और देखते थे श्यामानंद प्रभु का अलग अलग भाव प्रदर्शित करते, बार बार फिर से आग बबूला होता था, फिर से आग बबूला होता, एक पॉइंट पे देखा नहीं कि अपना सारा वस्त्र और पिटाई शुरू कर दी हृदय चैतन्य की, बोले क्या हाल बना रखा है तुम्हें, भेजा किसी और कार्य के लिए तो कर कुछ और बैठे, और फिर से उनके लहू निकलने लग गया। देखिए राधा रानी की कृपा होने के बाद में, ये राधे ललिता सखी द्वारा दिए गए नाम देने के बाद में, और सुबल सखा द्वारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बाद में भी ऐसा हालत हो सकती है। तो आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ शांति नहीं है, बहुत 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 कुछ है। फिर खैर वो दिन समाप्त हुआ, हृदय चैतन्य क्रोध से थे, विश्राम के लिए गए, विश्राम कर रहे थे, स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए, बोले हृदय चैतन्य, बोला जी महाप्रभु, बोले अरे महाप्रभु ये क्या हुआ, बोले क्या हुआ आपके वस्त्र सारे रक्त में, बोले तुम्हें किया है, बोले मैंने कहा किया, बोले हाँ तुम्हें किया, तुम जब उस श्यामानंद को मार रहे थे तो वो रक्त मेरे से निकल रहा था, तो आप समझ गए आप तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुरंत तो हृदय चैतन्य उठे, उन्होंने श्यामानंद से क्षमा मांगी और बोले मेरे से गलती हुई। श्यामानंद बोले नहीं आप कैसे क्षमा मांग रहे, श्यामानंद हृदय चैतन्य के चरणों में गिर गए, और हृदय चैतन्य ने कहा कि अब इसकी ये तुमसे अपराध हुआ है, हमसे अपराध हुआ है, इस अपराध का निषेध करने के लिए, अब क्षमा करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा फीस्ट करेंगे। ये वैष्णव तरीका है हर प्रकार की चीज से मुक्त होने के लिए, आप फीस्ट कर दीजिए। तो फीस्ट किया गया, फीस्ट आयोजन, तो अब जब गुरुजी बोले हम फीस्ट करेंगे तो फीस्ट कौन ऑर्गेनाइज करेगा, शिष्य कर। श्यामानंद बोले आपने बोला फीस्ट तो फीस्ट मैं ही ऑर्गेनाइज करूं, तो श्यामानंद फिर गए भिक्षा मांगे, और बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, कीर्तन हुआ, फीस्ट हुआ। आज भी वो फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में, श्यामानंदी वैष्णव बनाते 15 दिन का फेस्टिवल होता है कि सब। तो इतना बड़ा, तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में श्यामानंद प्रभु फंसे, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग अपने गुरु से स्वयं था, गुरु उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ब्रजवासी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको गलत समझ रहे हैं, परंतु ऐसे समय में भी उन्होंने हौसला नहीं हारा। रामायण में भी कथा आती है कि जब भरत अपने नाना जी के यहां से आते हैं, राम वनवास के लिए जा चुके हैं, दशरथ ने शरीर छोड़ दिया है, सब कोई देख रहा है, अच्छा भरत आ गए, कौशल्या बोलती है भरत मुबारक हो, भरत फट पड़ते हैं, वशिष्ठ कहते हैं भरत बहुत अच्छा हो तुम आ गए, खुश की बात है। भरत से सहा नहीं जा रहा कि हर कोई इस प्रकार सुन पर आरोप लगा रहा है। भरत ने बोला कि नहीं नहीं मैं राम, मेरा कोई दोष नहीं था, सब कही का था। भरतवाज मुनि के पास जाते हैं, भरतवाज मुनि भी बोलते हैं कि भरत तुम्हारी इच्छा क्या है राजा बनने की, बोले अरे नहीं आप तो मत बोलिए आप, परंतु भरत अपनी सिंसियरिटी बनाए हुए, चाहे हर कोई उनको गलत समझ रहा है, उसी प्रकार से श्यामानंद प्रभु चाहे कोई भी उनको गलत समझ रहा है, कैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ये भगवान की इच्छाएं है, कलियुग का प्रभाव है या नहीं है, भगवान की इच्छाएं कोई नहीं समझ सकता। भीष्मदेव भी बोलते अहो कष्टम अहो अन्याय यद्युनंदन, क्यों तुम्हें इतने कष्ट मिल रहे युधिष्ठिर, मैं कोई नहीं समझ सकता, कृष्ण के प्लान क्या है इनकंसीवेबल, किससे कौन सा लेसन किसको देना चाहते हैं वही जाने, कोई भी नहीं समझ सकता, बस इतना जानते हैं वह सुहृदम सर्वभूतानाम। तो श्यामानंद प्रभु इस चीज पर पूर्ण विश्वास करते हुए कृष्ण के आश्रय में थे और राधा रानी के आश्रय में, बोले उन्हीं का शरीर, ठीक है मार पड़ रही है, तत्यानुकम्प सुसमीक्षा माना भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मेरे अपने पाप है मेरी अपने, तब भी उन्होंने अपने गुरु के प्रति नेगेटिविटी नहीं डेवलप किया, हमेशा उनके बोले उनकी भी सेवा करते थे उनकी भी सेवा। ये नहीं कि गौरीदास पंडित ने स्टैंप लगा दिया अब तो उनको स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद भी वो विनम्र भाव से ही हृदय चैतन्य की सेवा करते रहे, जीव गोस्वामी की भी सेवा करते रहे, किसी भी प्रकार से किसी के प्रति उन्होंने गलत भाव नहीं रखा, और इस प्रकार से उनके भाव के होने की वजह से ही राधा रानी ने उनको सिलेक्ट किया था, पहले जानते थे कि इस प्रकार का व्यक्ति है, इस वजह से उनको विशेष कृपा मिली थी। आगे हम जानते हैं कैसे इनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में भेजा गया, जो श्यामानंद नरोत्तम श्रीनिवास इनको उड़ीसा भेजा गया, बुक का चोरी हुआ वापस में मिली भी, तो श्यामानंद प्रभु गए उड़ीसा की तरफ में, उड़ीसा में उन्होंने प्रचार शुरू किया, उड़ीसा में जब प्रचार शुरू किया इनको मिले रोहिणी ग्राम में जाके मिले रसिकानंद, रसिकानंद को पहले ही भगवान ने स्वप्न में निर्देश दिया था कि स्वयं जल्दी ही श्यामानंद आएंगे जो तुम्हें दीक्षा देंगे, और वहां पे दामोदर और कई सारे अन्य लोग मिले जिनको श्यामानंद प्रभु ने अपने शिष्य के रूप में स्थापित किया और जोर शोर से प्रचार किया। इनकी कृपा से पूरे उड़ीसा प्रदेश में उड़ीसा प्रांत में कृष्ण भक्ति फैलने लगी, जगन्नाथ जी की सेवा स्थापित हुई, और बड़े बड़े विशेष इनके प्रचार के कारनामे भी हैं, कैसे कैसे ये बहुत ही उग्र उग्र लोगों को भी ये भक्त बना देते थे। एक जमींदार था उसका नाम तो उद्दंड राय, नाम ही इतना उद्दंड था उसका नाम ही पड़ गया उद्दंड राय। लोग कहते हैं जगह ही बताई कि तरह उद्दंड है, लोगों को मारता है पीटता है रेप इत्यादि जो भी सारे गलत काम करता है। तो उन्होंने बोला मैं इनको भी डिलीवर करना, नित्यानंद प्रभु की तरह बोले मैं इसको भी इसका भी उद्धार करने के लिए जा रहा हूं। वो गए जैसे उसके लोग कह रहे जा रहे उद्दंड राय के पास क्या होगा, देखा घर से उद्दंड राय भागता हुआ इनके चरणों में पड़ गया, लोग हैरान हो गए। उद्दंड राय बोलते हैं कल रात में ही महाप्रभु आए और बहुत गुस्से में बोला कि बंद करो अपने कार्य, और कल मेरा शिष्य आ रहा है, कल मेरा अनुयायी आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है श्यामानंद, उसका आश्रय लो। इस प्रकार से कई लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। तो अभी समय हो गया, उनके बारे में हम कुछ प्रचार कार्य के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज विशेष हमने श्यामानंद प्रभु के जीवन से वो शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया है कि कैसे इतनी जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में भी उन्होंने अपना सिंसियरिटी अपना प्योरिटी बना के रखा, पूरी दुनिया यहां तक कि उनके गुरु जी भी उनको गलत समझ रहे हैं, परंतु तब भी उन्होंने विनम्र भाव अपने गुरु के प्रति अपने शिक्षा गुरु के प्रति प्रार्थना भाव हेल्पलेसनेस बनाए रखी भगवान के प्रति में, और इस प्रकार से इस वजह से उनको एम्पावरमेंट मिला कि उन्होंने इतना महान प्रचार प्रसार कार्य आगे फैलाया और आज इतने सारे भक्त हैं इस श्यामानंद संप्रदाय में। श्री श्यामानंद प्रभु की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री वंशीवदन दास ठाकुर की जय, नितई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।